اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
سنت صحابہ کرام کی نظر میں. اگلی روایت زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا. حجر اسود کیا ہے؟ وہ پتھر جو سیاہ رنگ کا ہے اور جو کعبہ کے بالکل ساتھ لگا ہوا ہے. کیا کہا؟ واللہ ہی میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے. اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استلام کہتے ہیں بوسہ دینا, حجر اسود کو ہاتھ لگا کر بوسہ دینا کرتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی نہ چومتا. پھر فرمایا, اب ہمیں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رمل تو دشمنوں کو دکھانے کے لیے تھا, اب تو اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا. پھر خود ہی فرمایا, لیکن رمل تو وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنت ہے, اور سنت چھوڑنا ہمیں پسند نہیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. استلام تو ہم نے دیکھ لیا, یعنی جب حجر اسود کے پاس سے طواف شروع کیا جاتا ہے تو مسنون عمل یہ ہے کہ اگر آپ ممکن ہو تو ہاتھ اس کو لگائیں اور پھر بوسہ دیں جب گزریں, لیکن نہ کر سکیں دور سے ہوں تو پھر اور مسئلہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ رمل. رمل کیا ہوتا ہے کہ جب جاتے ہیں لوگ عمرے کے لیے تو جو پہلا چکر ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا بھاگ کے چکر لگاتے ہیں. اصل میں یہ آپ پڑھیں گے سیرت کی کلاس میں بھی انشاءاللہ, کہ جب مسلمان عمرے کے لیے آئے تھے مکہ میں تو مکہ والوں نے خبر پھیلا دی ہوئی تھی کہ مدینہ کے بخاروں نے تو ان کو کمزور کر دیا ہے, یہ تو بیچارے بس اب بہت ہی نحیف ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے ان کو, یہ پہلوانوں کی طرح چلتے ہیں جیسے جاگنگ سٹائل ہوتا ہے نا, چھوٹے چھوٹے قدم لے کے اور اس طرح تیز تیز چلنا, تو اس سے ذرا دشمن کو دیکھ کے روب آتا ہے کہ ان لوگوں میں تو ابھی بھی بڑی جان ہے. تو جو آپ نے کیا وہی صحابہ کرام نے کیا. اگلی روایت بڑی پیاری روایت ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس جب کھانا لایا جاتا تو آپ اسے تناول فرمانے کے بعد میرے پاس بھیج دیتے. ایک روز آپ نے برتن جوں کا توں کھائے بغیر میری طرف بھیج دیا کیونکہ اس میں لہسن تھا. میں نے آپ سے پوچھا, کیا لہسن حرام ہے, گارلک؟ آپ نے فرمایا, نہیں, لیکن میں اس کی بو کی وجہ سے اسے پسند نہیں کرتا. حضرت ابو ایوب الانصاری نے کہا, جو چیز آپ ناپسند فرماتے ہیں میں بھی اسے ناپسند فرماتا ہوں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور ابو ایوب الانصاری کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہوسٹ تھے. مدینہ میں جانے کے بعد آپ نے شروع میں انہی کے گھر میں قیام کیا تھا. تو یوں ہی دنوں میں سے ایک واقعہ ہے کہ آپ ان کے لیے کھانا بنا کے بھیج دیتے تھے, اوپر آپ کھا لیتے جتنا کھا لیا ہوتا, اور اس کے بعد جب وہ واپس بھیجتے تو اس تھال میں سے آپ کی انگلیوں کے نشان دیکھ دیکھ کے اس کے اوپر سے یہ بھی کھاتے تھے, یعنی آپ کا بچہ ہوا کھانا یہ کھاتے تھے اور ڈھونڈا کرتے تھے کہ آپ نے کہاں سے کھایا ہے. لیکن ایک دن جب دیکھا کہ نہیں کھایا ہوا تو پھر یہ مسئلہ پیش آیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کتنی محبت فرماتے تھے اللہ کے نبی سے. اگلی روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. کیا؟ اللہ کی توحید, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, رمضان کے روزے اور حج ادا کرنا. ایک آدمی نے بات دہرا کر پوچھا, حج اور رمضان کے روزے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, نہیں, رمضان کے روزے اور حج. میں نے رسول اللہ سے اسی ترتیب سے حدیث سنی تھی. سبحان اللہ, ترتیب نہیں بدل سکے. ہم ہوتے کہتے ہیں ہاں کوئی حرج نہیں حج بھی ہے, کہا نہیں, پہلے روزہ پھر حج. اب انشاءاللہ پڑھیں گے شاید آگے بھی ایک روایت کہ ایک صحابی تھے برا بن عازب, تو ان کو اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی رات کو سونے کی ہے, اور جب دعا سنا دی تو پھر کہا اب تم مجھے سناؤ, تو انہوں نے صرف رسول کے لفظ اور نبی کے لفظ کو بدل دیا, یعنی نبی کے لفظ کی بجائے رسول کا کہہ دیا یا رسول کی بجائے نبی کا. تو اللہ کے نبی نے وہیں روک دیا, کہا نہیں, جو لفظ میں نے استعمال کیا وہی بولو. تو آج ہم تو دعاؤں میں جو اگلے پچھلے کافی اضافی لگا کے اور عذاب النار, عذاب القبر, عذاب الحشر, عذاب پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں. عموماً آپ دیکھیں کہ جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرۃ حسنتم وقنا عذاب النار, یہ قرآن کی دعا ہے. इसी तक रुक जाएं, लोग इसके आगे बढ़ाते हैं, अजाब अल कब्री, अजाब अल हशरी, और आगे भी कुछ कहते हैं। इजाज़त नहीं है, जो चीज़ जहाँ तक आ गई वहीं पर रुक जाए। तो बहरहाल इससे पता चला कि सहाबे कराम तरतीब भी नहीं बदलना चाहते थे। अगली रिवायत जैद बिन असलम से कहते कि मैंने अब्दुल्ला बिन उमर को खुले बटनों के साथ नमाज पढ़ते हुए देखा। मैंने आपसे पूछा, ऐसा आप क्यों करते हैं? कहा, मैंने रसूलुल्लाह को ऐसे ही नमाज पढ़ते हुए देखा। इब्ने खुजैमा ने इसको रिवायत किया, यानी अगले बटन खोल देते थे। बाज़ रिवायतें आप ऐसी पढ़ेंगे कि कोई सहाबी को रिवायत बयान करते हैं और साथ ही मुस्कुरा दिए। क्यों मुस्कुराए? कहा, इसलिए कि जब अल्लाह के नबी ने ये रिवायत बयान की थी तो वो भी मुस्कुराए थे। इतना प्यार, छोटा छोटी बातों में आपसे मोहब्बत करते थे ना। बाज़ दफ़ा इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर टेक लगाते थे तो ये टेक लगा के उस रिवायत को बयान करते थे। तो जिससे मोहब्बत होती है इंसान उसकी एक छोटी छोटी अदा पे और उसके एक एक छोटी हरकत पे भी गौर करता है, और सहाबा किराम उन्हीं लोगों में से थे। हज़रत मुजाहिद रहमहुल्लाह कहते हैं, हम अब्दुल्ला बिन उमर के साथ एक सफ़र में जा रहे थे। एक जगह से गुजरे तो अब्दुल्ला बिन उमर रास्ते से दूर हट गए। इनसे पूछा गया, आपने ऐसा क्यों किया? अब्दुल्ला बिन उमर ने जवाब दिया, मैंने रसूलुल्लाह को ऐसे ही करते देखा है, इसलिए मैंने ऐसा ही किया। यानी वहां से हट गए। यहां तो सिर्फ इतनी बात आती है, बल्कि ये अगली रिवायत बल्कि आपको मजीद वाजह करेगी। हजरत अनस बिन सीरी फरमाते हैं कि मैं अब्दुल्ला बिन उमर के साथ अरफात में था, जब वो कहीं जाते तो मैं भी इनके साथ जाता, यहाँ तक कि हम इमाम के पास पहुँचे और इसके साथ नमाज़ ज़ुहर और असर मिलाकर यानी जमा करके अदा की। फिर अब्दुल्ला बिन उमर ने वकूफ़ फरमाया। वकूफ़ का मतलब है खड़े हुए, जो ख़ास तौर पे 9 ज़िलहज के दिन जो ज़ुहर के और सनसेट तक जो खड़ा होना होता है उसको वकूफ़ कहते हैं। तो मैं और मेरे साथियों ने भी इनके साथ वकूफ़ किया, यहाँ तक कि इमाम अरफात से वापस लौटे तो हम भी इनके साथ वापस लौटे, यहाँ तक कि उसी तंग रास्ते पर पहुँचे जो माजमीन जगह का नाम है इससे पहले है। वहाँ पहुँचकर अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी सवारी बिठा दी और हमने भी अपनी सवारियाँ बिठा दी। हमारा ख्याल था कि अब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन जो मुलाज़िम इनकी सवारी पर मुतय्यन था उसने बताया कि अब्दुल्ला बिन उमर नमाज़ नहीं पढ़ना चाहते, बल्कि नबी अकरम यहाँ पहुँचकर हाजत ज़रूरिया से फारिग हुए थे। चुनांचे अब्दुल्ला बिन उमर भी इसी जगह हाजत ज़रूरिया से फारिग होना पसंद किया करते थे। अहमद ने रिवायत किया, यानी सफर में थे और उस वक्त खास जिस जगह पे अल्लाह के नबी बैठे। यहाँ इस वाक्य की इस तरह एक और रिवायत में भी आता है कि एक सफर में थे और एक खास जगह पे अपनी सवारी से उतरे और बिल्कुल इस कैफियत में बैठ के जैसे इंसान कज़ाए हाजत के लिए बैठता है रेस्ट रूम में, तो फिर उठ गए। कुछ भी तलब नहीं थी, कुछ किया भी नहीं, कुछ ऐसा मामला नहीं। तो कहा, ये आप किस तरह बैठने में क्या हिकमत थी? तो कहा, मैंने एक दफ़ा अल्लाह के नबी के साथ सफ़र किया था और ठीक इस मुकाम पर आप अपनी ज़रूरत से फारिग हुए थे। जब आज मैं यहाँ से गुजरा तो मैंने सोचा कि मैं सुन्नत से क्यों महरूम रहूँ और सिर्फ आपकी मोहब्बत में मैं ऐसे बैठा। अब ये बातें हमें तो दीवानगी लगेगी ना, हम कहेंगे क्या थे, अब इतनी भी क्या बात, ये तो शख्सियत परस्ती हुई। नहीं, ये मोहब्बत परस्ती है, जिससे मोहब्बत होती है और ख़ास तौर पर अल्लाह का नबी, उनके लिए तो एक एक चीज़ जो थी सहाबा करम इस तरह देखा करते थे कि छोटी छोटी बात में आपकी बात को कॉपी करते थे। अनस बिन सीरी फरमाते हैं कि अनस बिन मालिक मुल्क शाम से तशरीफ़ लाए तो ऐन तमर के मुकाम पर हमने इनका इस्तकबाल किया। मैंने इन्हें गधे पर नमाज पढ़ते देखा और गधे का रुख किबले की बजाय किबले के दाईं तरफ था। मैंने अनस से पूछा, आपने किबले की तरफ रुख किए बगैर नमाज क्यों पढ़ी? उन्होंने फरमाया, अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह नमाज पढ़ते ना देखता तो कभी नमाज ना पढ़ता। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। यानी मुल्क शाम से तशरीफ़ लाए थे और एक ख़ास ऐसा मुकाम था कि जहाँ आपने ये एक्शन हासिल किया। और इससे ये भी पता चला कि नफिल नमाज थी तो किबले के तायुन के अंदर अगर थोड़ा बहुत फ़र्क हो के भी नमाज पढ़ी गई तो वो भी उसकी भी रुख्सत है। अगली रिवायत अब्दुल्ला बिन उमर से कहते हैं कि नबी अकरम ने सोने की एक अंगूठी बनवाई तो सहाबे कराम ने भी आपकी देखा देखी अंगूठियाँ बनवा ली। आपने फरमाया, मैंने सोने की अंगूठी बनवाई थी, तुमने भी बनवा ली। चुनाचे आपने अंगूठी उतार फेंकी और फरमाया, अब मैं कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा। आपकी तबा में सहाबे कराम ने भी अपनी अपनी अंगूठियाँ उतार कर फेंक दी। इसे बुखारी ने रिवायत किया। अब सवाल पैदा होता है कि आपने सोने की अंगूठी क्यों बनवाई पहले, फिर सहाबा ने क्यों बनवाई, जबकि आज तो सोना हराम है, तो ये हुक्म उतरने से पहले की बात थी। इसके बाद अल्लाह के नबी ने कभी सोने की अंगूठी नहीं बनवाई, बल्कि आपके पास चांदी की अंगूठी होती थी जिसमें आपकी मोहर नबूवत थी। और ये भी तब बनी, आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सीरत में, कि जब बादशाहों को ख़त भेजने का वक्त आया तो उस दौर में रिवाज था कि स्टैम्प्ड लेटर के अलावा कबूल नहीं करते थे। जैसे आज भी आप देखें, एक मुल्क का बादशाह या वजीर आजम किसी दूसरे को भेजे तो उसके खास कोई गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, तो उस दौर में स्टैम्प का होना जो था वो डॉक्यूमेंटेशन थी। तो इसके अलावा यानी कोई आपने इस तरह अपने फैशन के लिए या मंगनी या शादी की अंगूठी नहीं बनवाई थी कि जो आज हमारे यहाँ पहनी जाती है शादी के मौके पर। अगली रिवायत है, सहाबी रसूल इब्ने खंजलिया से रिवायत है कि नबी अकरम ने फरमाया, अगर खुरैम असदी के बाल लंबे ना होते और तहबन नीचे लटका हुआ ना होता तो बहुत अच्छा आदमी था। रसूलुल्लाह की ये बात खुरैम असदी तक पहुंच गई तो खुद ही छुरी लेकर कानों तक अपने बाल काट दिए और तहबन निस पिंडलियों तक ऊंचा कर दिया। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। यानी इनके बारे में अल्लाह के नबी ने कमेंट बस दिया कि बहुत अच्छा आदमी है लेकिन इसके बाल इतने लंबे नहीं होने चाहिए थे, या इसके मतलब शलवार जो है, जो अजार है वो ज़्यादा ना हो, तो बर्दाश्त नहीं कर सके कि वेट करें या कोई और मेरे बाल काटे, खुद ही छुरी से काट लिया। और आप सोचें कैसे कटे होंगे, हैं? और जो तहमन काटा होगा वो भी कैसा होगा। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी के हाथ की उंगली में सोने की अंगूठी देखी तो उसे उतार कर फेंक दिया और फरमाया, तुम में से कोई सोने की अंगूठी पहन कर गोया आग के अंगारे का कसरत करता है, यानी हाथ में आग का अंगारा पकड़ता है। आपके तशरीफ ले जाने के बाद इस आदमी से कहा गया, अंगूठी उठा लो और इससे कोई दूसरा फ़ायदा हासिल कर लो, यानी अपनी बीवी या बहन को दे दो या फरोख्त करो, यानी औरतों पे तो हराम नहीं था। सहाबी ने कहा, अल्लाह की कसम जिस अंगूठी को रसूलुल्लाह ने फेंक दिया इसे कभी ना उठाऊंगा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। और आखिरी रिवायत इस चैप्टर की हज़रत जाबिर रजी अल्लाह अन्हों से रिवायत है, एक मरतबा जुमे के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ़ लाए तो फरमाया, लोगो बैठ जाओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हों ने सुना तो मस्जिद के दरवाजे पर ही बैठ गए। रसूलुल्लाह ने देखा तो फरमाया, अब्दुल्ला मस्जिद के अंदर आकर बैठो। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। यानी इतनी भी देर नहीं करना चाहते थे कि जितनी देर में कोई अंदर आके बैठे। इसी तरह एक मौके पे नबी सल्लम किसी से खुतबे में बयान कर रहे थे, खड़े हो जाओ, तो हज़रत उमर जो थे वो उस वक़्त ऐन उस वक़्त दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहे थे मस्जिद के, तो वहीं खड़े हो गए। थोड़ी देर लोगों ने देखा, आप क्यों खड़े हो गए? कहा, मैंने अभी अल्लाह के नबी की आवाज़ सुनी है कि तुम खड़े रहो। तो कहा, वो आपको थोड़ी कहे, वो तो अंदर एक शख्स था उसको कहा था। कहा, अच्छा, फिर ये सुन के अंदर गए। तो लिहाजा ये आपके मोहब्बत करने वालों की बातें थी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम रुकेंगे।